मैं सुजीत कुमार राजपूतों की उत्पत्ति अध्याय का रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक का काल उत्तर भारत के इतिहास में सामान्यतः राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। 7वीं-8वीं सदी से हमें राजपूतों का उदय दिखाई देने लगता है तथा 12वीं सदी तक आते आते उत्तर भारत में अनेक उनके 36 कुल अत्यंत प्रसिद्ध हो जाते हैं। राजपूत बड़े वीर तथा स्वाभिमानी होते थे और साहस, त्याग, देशभक्ति आदि के गुण उनमें कूट कूट कर भरे हुए थे, परंतु पारस्परिक संघर्ष तथा द्वेष भाव के कारण वे देश की रक्षा नहीं कर सके तथा देश की स्वाधीनता को उन्होंने विदेशियों के हाथों में सौंप दिया। राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का विकृत रूप है। राजपुत्र शब्द का प्रयोग जो पहले राजकुमार के अर्थ में किया जाता था, पूर्व मध्यकाल में सैनिक वर्गों तथा छोटे छोटे जमींदारों के लिए किया जाने लगा। वस्तुतः 8वीं सदी के उपरांत राजपूत शब्द शासक वर्ग का पर्याय बन जाता है। इस वर्ग की उत्पत्ति का प्रश्न विद्वानों के बीच अत्यंत विवाद का विषय रहा है। मुख्यतः इस संबंध में दो मत दिए जाते हैं, पहला विदेशी उत्पत्ति का मत, दूसरा भारतीय उत्पत्ति का मत। इसके अतिरिक्त विद्वानों का एक वर्ग राजपूतों को भारतीयों तो मानता है लेकिन उनकी क्षत्रियेतर उत्पत्ति का संकेत करता है। विदेशी उत्पत्ति का मत। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का प्रतिपादन सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने किया। उनके अनुसार राजपूत विदेशी सिथियन जाति की संतान थे। इस मत का आधार सिथियन तथा राजपूत जातियों की कुछ सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं से समानता है, जो टॉड के अनुसार इस प्रकार है। पहला, रहन सहन तथा वेशभूषा में समानता। दूसरा, मांसाहार का प्रचलन। तीसरा, रथों द्वारा युद्ध करना। चौथा, यज्ञों का प्रचलन। चूंकि उपर्युक्त प्रथाओं का प्रचलन सिथियन तथा राजपूत दोनों ही समाजों में था, अतः इस आधार पर कर्नल टॉड राजपूतों की को सिथियन जाति का वंशज मानते हैं। इसी मत का समर्थन करते हुए विलियम क्रुक ने प्रतिपादन किया है कि तत्कालीन समाज में कोई विदेशी जातियां निवेश करती थीं। ब्राह्मणों का बौद्ध आदि नास्तिक समुदायों में द्वेष था, अतः उन्होंने कुछ विदेशी जातियों को शुद्धि संस्कार द्वारा पवित्र करके भारतीय वर्ण व्यवस्था में स्थान प्रदान कर दिया। इन्हीं को राजपूत कहा जाने लगा। स्मिथ के अनुसार उत्तर पश्चिम की राजपूत जातियों प्रतिहार, चौहान, परमार, चौलिक आदि की उत्पत्ति शकों तथा हुणों से हुई थी। इसी प्रकार गढ़वाल, चंदेल, राष्ट्रकूट आदि मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्र की जातियां गुंड, भर जैसी देशी आदिम जातियों की संतान थी। स्मिथ की धारणा है कि शक, कुषाण आदि विदेशी जातियों ने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। वे कालांतर में भारतीय समाज में पूर्णतया घुल मिल गईं। उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपना लिया। इन विदेशी शासकों को भारतीय समाज में क्षत्रियत्व का पद प्रदान कर दिया गया। मनुस्मृति में शकों को वात्य क्षत्रिय कहा गया है। इन जातियों के वीरतापूर्वक कृत्यों को उनके दरबारी चारणों ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया तथा उनकी तुलना रामायण और महाभारत के वीरों से की। भंडारकर ने भी विदेशी उत्पत्ति के मत का समर्थन किया है। उनके अनुसार अग्निकुल के चार राजपूत वंश प्रतिहार, परमार, चौहान तथा सोलंकी गुर्जर नामक विदेशी जाति से उत्पन्न हुए थे। चौहान तथा गुहिलोत जैसे कुछ वंश विदेशी जातियों के पुरोहित थे। उन्होंने आगे बताया कि गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग निश्चयतः खंजर नामक जाति की संतान थे जो हुणों के साथ भारत में आई थी। पुराणों में हैयर नामक राजपूत जाति का उल्लेख शक, यवन आदि विदेशी जातियों के साथ किया गया। चंदेल सेनापति आल्हा तथा उदर बनाकर क्षत्रिय वंश के थे जो कुषाणों से संबंधित था। कनिष्क के एक गवर्नर का नाम बनस्फर मिलता है। संभव है कि इसी के वंशज बाद में बनकर क्षत्रिय कहे गए। हुणों का उल्लेख हम राजपूतों के 36 कुलों में पाते हैं। इससे भी राजपूतों का विदेशी होना सिद्ध होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन विदेशी जातियों को शुद्धि द्वारा भारतीय समाज में सम्मिलित करने के उद्देश्य ही पृथ्वीराज रासों में अग्निकुंड द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। इस कथा के अनुसार जब परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो शासकों का अभाव हो गया। मलेच्छों तथा राक्षसों के अत्याचार बढ़ गए। पृथ्वी त्रस्त हो उठी। अतः पृथ्वी के त्रास का हरण करने के लिए विशिष्ट ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, जहां यज्ञ की अग्निकुंड में चार राजपूत कुलों का उद्भव हुआ, परमार, प्रतिहार, चौहान तथा चालुक्य। इस कथा से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारतीय वर्ण व्यवस्थाकारों ने विदेशी जातियों को शुद्धि द्वारा भारतीय वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत स्थान प्रदान कर दिया था। भारतीय उत्पत्ति का मत। राजपूतों की उत्पत्ति के उपर्युक्त विदेशी सिद्धांतों का विरोधी गौरीशंकर हीरा चंद्र ओझा तथा सी वी वैद्य जैसे कुछ भारतीय विद्वानों ने किया है। इनकी संपत्ति में राजपूत विशुद्ध भारतीय क्षत्रियों की ही संतान थे जिनमें विदेशी रक्त का मिश्रण बिल्कुल ही नहीं था। इन विद्वानों के प्रमुख तर्क इस प्रकार हैं। पहला, टॉड ने राजपूत तथा शिथियन जातियों में जिन समान प्रथाओं का संकेत किया है वह कल्पना पर आधारित है। ये सभी प्रथाएं भारत की प्राचीन क्षत्रिय जाति में देखी जा सकती है। दूसरा, क्रुक के निष्कर्ष की पुष्टि किसी भी ऐतिहासिक साक्ष्य से नहीं होती है, यह विचार कोरी कल्पना की उपज है। तीसरा, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि खंजर नामक किसी जाति ने भी कभी भी भारत के ऊपर आक्रमण किया हो। भारतीय अथवा विदेशी किसी भी साक्ष्य में इस जाति का उल्लेख नहीं मिलता है। चौथा, पृथ्वीराज रासों में वर्णित अग्निकुल की कथा ऐतिहासिक नहीं लगती। इस कथा का उल्लेख रासों की प्राचीन पांडुलिपियों में नहीं मिलता है। इस प्रकार विदेशी उत्पत्ति का मत कल्पना पर आधारित अधिक आधारित है, ठोस तथ्यों पर कम। राजपूत शब्द वस्तुतः राजपुत्र का ही अपभ्रंश है जिसका प्रयोग भारतीय ग्रंथों में क्षत्रिय जाति के लिए हुआ है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में राजपूत शब्द का प्रयोग राजन्य अथवा रक्षक के रूप में हुआ। महाभारत में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने वाले को राजपूत कहा गया है। आठवीं शती के लेखक भवभूति ने कौशल्या को राजपुत्री कहा है। उत्तर मध्यकालीन साहित्य में भी राजपूत शब्द का प्रयोग क्षत्रिय जाति के लिए ही किया गया है। कलहन की राज तरंगनी में शाही परिवारों के उत्तराधिकारी को राजपूत की संज्ञा प्रदान की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुर्कों द्वारा पराजित हो जाने के बाद राजपुत्रों की राजनीतिक प्रतिष्ठा समाप्त हो गई तथा तुर्कों ने अपमान स्वरूप उन्हें राजपूत कहना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में यही नाम लोक प्रचलित हो गया। अतः इन विद्वानों के अनुसार राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान मानना चाहिए। ओझा ने राजपूतों को विशुद्ध क्षत्रिय सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति से उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसमें एक स्थान पर विवृत है कि पौंडुक चौल द्रविड़ यवन शक भारत पौन चीन मूलतः क्षत्रिय थे किंतु वैदिक क्रियाओं के त्याग तथा ब्राह्मणों से विमुख हो जाने के कारण उनका क्षत्रियत्व समाप्त हो गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शक यवन आदि जिन राजपूतों का जनक बताया गया है क्षत्रिय ही थे। यदि वे विदेशी होते तो भारतीय संस्कृति एवं भारत देश के प्रति उनमें इतनी अधिक भक्ति कदापि नहीं हो सकती थी, परंतु ये दोनों ही मत अतिवादी है। वस्तु स्थिति तो यह है कि भारतीय वर्ण व्यवस्था में सदा ही विदेशी जातियों के लिए स्थान दिया गया है। यहाँ कोई भी जाति ऐसी नहीं थी जिसमें विदेशी रक्त का मिश्रण न हो। कई विदेशियों ने भारतीय वंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सातवाहन तथा इक्ष्वाकु शासकों ने पश्चिमी क्षत्रपों की कन्याओं के साथ विवाह किए जिसके अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं। इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन वर्ण व्यवस्था पर्याप्त लचीली थी। वैदिक काल में क्षत्रियों का कोई विशिष्ट वर्णन नहीं था, अपितु उन लोगों का क्षत्रिय कहा गया जो वीर तथा साहसी होते थे। स्वयं क्षत्रिय शब्द का अर्थ है छत अर्थात हानि से रक्षा करने वाला। अतः यह कहा जा सकता है कि यद्यपि राजपूत क्षत्रियों के वंशज थे तथापि उनमें विदेशी रक्त का मिश्रण अवश्य था। वैदिक क्षत्रियों में विदेशी जाति के वीरों के मिश्रण से जिस नवीन जाति का आविर्भाव हुआ उसे ही राजपूत कहा गया। राजपूत ना तो पूर्ण रूपेण विदेशी थे और ना पूर्ण रूपेण भारतीय थे। आधुनिक सामाजिक आर्थिक इतिहासकारों ने राजपूत वंश की उत्पत्ति के लिए कुछ सामाजिक प्रक्रियाओं के उत्तरदायी मानना है। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि राजस्थान तथा गुजरात में प्रारंभिक राजपूत वंशों का उदय उस समय ही हुआ जबकि गुप्त साम्राज्य के पतनोपरांत विदेशी आक्रमणों के कारण अर्थव्यवस्था पतनोन्मुख हो रही थी। ठीक इसी समय देश में सामंतवादी प्रवृत्तियां भी प्रबल हुई। प्राचीन राजपूताना क्षेत्र जो राजपूत वंशों के प्रमुख केंद्र था में सामंती संगठन सुदृढ़ था। इसी कारण वहां के छोटे छोटे भूमिधरों अथवा जमींदारों की संज्ञा राजपूत हो गई। 12वीं शती की रचना अपराजित पृच्छा से पता चलता है कि राजपूत वर्ग में अधिकांश था छोटे भूमिधर सरदार ही शामिल थे जो एक या इससे अधिक गाँवों के स्वामी होते थे। इस संदर्भ में मत्स्य पुराण में उल्लिखित ब्रह्म छत्र परंपरा की ओर ध्यान दिलाया गया है जो पूर्व मध्यकालीन समाज में व्यापक आधार प्राप्त कर गई थी। इसे तात्पर्य उन वंशों से है जो पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में क्षत्रिय हो गए। राजपूतकालीन कुछ लेखों तथा साहित्य में कुछ राजपूत वंशों के ब्राह्मण मूल की ओर संकेत किया गया है। घटियाला लेख में प्रतिहारों के मूल पुरुष हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया गया है। बिचौलिया लेख में चामन शासक सामंत राज को विपश्री वस्त्र गोत्र में उत्पन्न कहा गया है। पिंगल सूत्रवृत्ति में परमार मुंज को तथा वल्ला चरित्र में शेन वंश राजाओं को ब्रह्मक्षत्र कुल का बताया गया है। इसी प्रकार चार्ट्स लेख गुहिल वंश को ब्रह्मक्षत्र कहता है। अतः स्पष्ट है कि इस समय कई ब्राह्मणों कुलों ने भी राजपद प्राप्त कर लेने के बाद अपने को राजपूत घोषित कर दिया तथा समाज में उन्हें इसी रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। कुछ लेखों से यह भी पता चलता है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्णों के बीच वैवाहिक संबंध होने के फलस्वरूप जो संतानें उत्पन्न हुईं उन्हें ब्रह्मक्षत्र या ब्रह्मक्षत्रिय कहा गया। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि राजपूत वंश की उत्पत्ति भारतीय समाज की विविध जातियों तथा जनजातियों के साथ उन वंशों के आक्रामक जातियों से भी हुई जो भारत में बसी गई थी। हिंदू समाज ने जिन्हें आत्मसात कर लिया था, यही कारण कि पूर्व मध्यकाल के कई ग्रंथों में राजपूतों को मिश्रित वर्ण का बताया गया है। इसमें संदेह नहीं कि इस वंश में उच्च वर्ण के साथ साथ निम्न वर्ण के रक्त का भी मिश्रण था। इस काल में कई राजवंश क्षत्रियेतर जातियों से भी संबंधित थे।